लंदन में सुबह के 7 बज रहे थे। शिवी अपनी टीम के साथ पूरी रात प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में लगी थी। काम पूरा होने के बाद चारों टीम मेंबर्स ने राहत की सांस ली। वो सभी काफ़ी थके हुए थे, फिर काम पूरा होने की खुशी उनके चेहरे पर चमक थी। फाइनली ये हो गया, कहकर हिमांश ने उबासी ली। वो अपने सामने की टेबल पर सिर टिकाकर लेट गया। उसे ऐसा करता देख मिस्टर दास बोले, देखो तो इस लड़के को, पूरी रात सबसे ज़्यादा कॉफ़ी इसी ने पी है, फिर भी इसे नींद आ रही है। हाँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ मिस्टर दास, उल्लू नहीं जो रात रात भर जाग कर काम करे, हिमांश ने लेटे लेटे जवाब दिया। चलो अब बहस बंद करो और सारी फाइल्स अच्छे से अरेंज कर मिस्टर ओबेरॉय के ऑफिस तक पहुँचा दो, फिर हम भी घर जाकर आराम से सो सकें, मिस श्रीवास्तव ने कहा। क्या हम घर जा सकते हैं? क्या हमें वापस ऑफिस आना पड़ेगा? शिवी के लिए ये सब पहली बार था, तो उसने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। उसकी बात सुनकर हिमांश ने अपना सिर उठाया। तो तुम क्या चाहती हो, पूरी रात गधे नहीं उल्लू की तरह काम करने के बाद भी हम यहाँ अगले एक पूरे दिन फिर काम करेंगे? हमारे बॉस की इमेज भले ही खड़ूस बॉस की हो, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं, चिराग दास ने कहा। हमने पूरी रात यहाँ काम किया तो आज के दिन हमें ऑफिस नहीं आना होगा, ऊपर से सैलरी भी नहीं कटेगी, और सच कहें तो हम बहुत लकी हैं, आज फ्राइडे है और फिर वीकेंड, पूरे 3 मज़े से गुजारूंगा, सोच रहा हूँ कहीं घूमने चला जाऊँ। तुम और घूमने जाओगे? किसके साथ? तुम्हारी शादी नहीं हुई तो क्या अकेले घूमने निकल जाओगे? काजोल उसके घूमने जाने की बात सुनकर हंसी। वो दोनों अपनी आपसी नोकझोंक में लगे थे, तो वहीं शिवी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 3 दिन की छुट्टी, मुझे अब किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिया जा सकती हूँ और पापा की हियरिंग अटेंड कर सकती हूँ। मुझसे मिलने के बाद वो कोर्ट में सच बता देंगे कि उन्होंने उस रात कुछ नहीं किया था, शिवी ने अपने मन में कहा। वो अपनी जगह से उठी और हिमांश के पास जाकर बोली, क्या मुझे मेरा मोबाइल मिल सकता है? मुझे घर जाना है। देखो तो लड़की, 3 दिन की छुट्टी की बात सुनकर कितनी एक्साइटेड हो गई है, रुक जाओ, चाय नाश्ता करके चलेंगे, चिराग दास ने कहा। नहीं, मुझे अभी जाना है, शिवी ने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर जाने लगी। हिमांश भी उसके पीछे पीछे जाने लगा ताकि उसे उसका फ़ोन दे सके। उसके जल्दबाजी करने पर चिराग दास पीछे से चिल्लाया, अरे लड़की रुको तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है, अपनी नहीं तो लोगों की सेफ्टी का तो ख्याल करो, मास्क और ग्लव्स पहन लो, वरना तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी तरह ही सजीव बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। शिवी ने उनकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसके ऐसा करने पर चिराग दास पीछे से ज़ोर से चिल्लाकर बोले, मिस अय्यर तुम बहुत घमंडी हो। चली गई है, काजोल ने आंखें तरेर कर कहा। उसने अपने बनाए प्रोजेक्ट की फाइल्स और बैग उठाया और वहां से जाने लगी। शिवी के साथ हिमांश पहले ही जा चुका था, चिराग दास अकेले वहां बचा था। जाने दो सबको, मैं तो चाय नाश्ता करके ही जाऊंगा, इतना काम करने के बाद मेरी हिम्मत नहीं है कि घर जाके कुछ बना सकूं। वो वहां से ऑफिस के फूड एरिया में जाने लगा। शिवी वहां से निकलने के बाद ऑफिस की लिफ्ट में थी। उसने अपना मोबाइल जल्दी से ऑन किया। उसे काफी लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। उन लोगों में सबसे ज्यादा कॉल सिद्धांत के थे। ओ गॉड, इतने सारे कॉल्स, आई होप सब ठीक हो। ऐसा करती हूँ, घर जाकर सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगी और रास्ते में इसे सब बता भी दूंगी। शिवी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद लिफ्ट से बाहर निकली ही थी कि सिद्धांत का कॉल फिर से आ गया। उसने इधर उधर देखा तो ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ आने लगा था। शिवी ने सामने बाथरूम देखा तो बिना सोचे समझे वहां चली गई। उसने सिद्धांत का कॉल पिक किया। उसके फोन उठाते ही वो उस पर गुस्से में बिफर पड़ा। कहाँ हो तुम? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? पता भी है आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है? शिवी उसके चिल्लाने पर घबरा गई। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं बस शाम तक वहां पहुंच जाऊंगी, तुम कैसे भी करके हियरिंग कल। शिवी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सिद्धांत फिर गुस्से में चिल्लाया, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है शिवी? वो कोर्ट की हियरिंग है, कोई मोहल्ले की पंचायत नहीं, जो कोई इंसान नहीं पहुंचा तो उसे थोड़ी देर रुक कर रख लेंगे। पिछली बार भी तुमने डेट आगे बढ़वाई थी, बस एक दिन की बात है सिड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, थिंग्स आर नॉट ईजी फॉर मी। शिवी की आवाज़ से लग रहा था मानो वो अगले ही पल रो देगी। कल सैटरडे है, 2 दिन कोर्ट बंद रहेगा। पिछली बार भी जब मैंने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था तब मेरे डैड समझ गए थे, वो ऑलरेडी इस केस को लेने की वजह से मुझसे नाराज हैं। इस बार सिद्धांत ने नरमी से जवाब दिया। कुछ देर बाद हियरिंग शुरू होने वाली है, आई एम सॉरी बट दिस टाइम आई कांट डू एनीथिंग। उसके इतने कहने भर से शिवी फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज मेरे पापा को बचा लो, वो बेगुनाह है, वो उस रात वहां मौजूद नहीं थे, मैंने खुद उन्हें हमारे घर के गैराज में बंद देखा था, वो रोते हुए बोल रही थी। पर इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोर्ट सबूतों पर जलता है, उनके मोबाइल की लोकेशन उसी जगह की थी जहां वो हादसा हुआ था, सिद्धांत ने कहा। ऐसा भी तो हो सकता है उनका मोबाइल किसी और के पास हो। शिवी तुम समझ क्यों नहीं रही, मिस्टर अय्यर बार बार यही कह रहे हैं इन सब में उनका हाथ है। मैं तुम्हें यहां इसीलिए बुलाना चाहता था क्योंकि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हो, अगर वो तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखें तो शायद उनका मन बदल जाए और वो सच बोल दे, सिद्धांत ने बताया। शिवी ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, उन दोनों के बीच एक अजीब चुप्पी छाई हुई थी। काफी देर की चुप्पी के बाद सिद्धांत बोला, मुझे जाना होगा शिवी, लंच टाइम खत्म होने वाला है। मिस्टर अय्यर को यहाँ लाया जा चुका है, मैं उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश करूंगा, आई होप वो समझे, कहकर सिद्धांत कॉल काटने को हुआ। तभी शिवी जल्दी से बोली, रुको, क्या मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात कर सकती हूँ? ठीक है, सिद्धांत ने उसकी बात पर हामी भरी। वो वहां से अंदर गया। एक कमरे में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के साथ मिस्टर शिव अय्यर बैठे थे। वो पिछले 2 साल से भी ज्यादा के समय से जेल में थे। उनके चेहरे पर गहरी दाढ़ी थी और आंखों में निराशा के भाव। जो मिस्टर शिव अय्यर पहले काफी फिट हुआ करते थे, अब उनका पेट निकला हुआ था। उन्होंने अपने जीने की आस छोड़ दी थी। सिद्धांत वहां आया। उसने कांस्टेबल से कहा, मुझे अपने क्लाइंट से अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कांस्टेबल ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने तेज आवाज में बाकी लोगों से कहा, कमरा खाली करो रे, साहिब को जरूरी वार्तालाप करने का है। जग हार मानिल, पनहा नहीं। उसके कहने के अंदाज से साफ था कि वो सिद्धांत का मजाक बना रहा था। सिद्धांत ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। एक एक करके सब कमरे के बाहर खड़े हो गए। उनके जाने के बाद सिद्धांत ने कमरे का दरवाजा बंद किया और उनके सामने आकर बैठ गया। तुम क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाते हो? तुम एक अच्छे वकील हो, किसी बेगुनाह को बचाने में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, शिव अय्यर ने कहा। शिवी ने काफी समय बाद उनकी आवाज सुनी थी। उनकी आवाज सुनकर वो इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सिद्धांत ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत शिवी के कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट कर दिया। मिस्टर अय्यर ने जब अपने सामने शिवी को देखा तो तुरंत उन्होंने अपनी आंखें घुमा ली। शिवी की आंखों में आंसू थे। पूरी रात काम करने की वजह से वो काफी थकी हुई भी थी।
शिवी ने जैसे तैसे करके अपने इमोशंस को काबू किया और कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो पापा? मैंने सबसे ज्यादा प्यार आपसे किया था, आप मेरी जीने की वजह हो। मैं आज भी आपके लिए जी रही हूँ, इस आस में कि कभी ना कभी हम एक साथ फिर से आएंगे और एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में रहेंगे। शिवी की बात सुनकर मिस्टर अय्यर की भी आंखें नम हो गई। उन्होंने शिवी की तरफ देखा और जवाब में कहा, तुमने वही पिंक स्वेटर पहना है जो मैंने तुम्हें लाकर दिया था। वो शिवी को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बातचीत का रुख ही बदल दिया। आप बात मत बदलिए पापा, आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए, मिस्टर अय्यर ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और आज भी मुझे याद करती हो, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है मेरी बच्ची, अब तुम्हारा हैप्पी फैमिली का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मम्मा ने दूसरी शादी कर ली तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, हम दोनों एक साथ रहेंगे। मैं मम्मा को मना लूंगी कि वो मिस्टर वॉटसन को डिवोर्स दे दे और फिर हमारे साथ रहने आ जाए। तुम अच्छे से जानती हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, मिस्टर अय्यर ने अपने आंसू पोंछे और खुद को अंदर से सख्त किया। अच्छा हुआ बेटा मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे लिए परेशान मत हो, मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। कोई भी इंसान अपने बुरे कर्मों से भाग नहीं सकता, तो ऐसा समझ लो तुम्हारे पापा ने भी कुछ बुरे काम किए थे जिनकी सजा उन्हें मिल रही है। मैंने गलत किया, उन सब में तुम लोगों की तो कोई गलती नहीं, तुम्हारी मम्मा ने आगे बढ़ना चुना, मैं इसके लिए उसे कभी गलत नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूँ उसकी तरह तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपना कैरियर बनाओ, एक अच्छे लड़के से शादी करो, मेरी चिंता मत करो। मिस्टर अय्यर शिवी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज पापा ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे याद है आप उस रात घर पर ही थे, मैंने आपको घर के गैरेज में देखा था, आप परेशान थे और इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, मुझे नहीं पता आप क्यों झूठ बोल रहे हो, पर आज आपको मेरे खातिर सच बोलना ही होगा। शिवी की बात सुनकर मिस्टर अय्यर चुप हो गए। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पा रहे थे। तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, तुमने उस रात मुझे गैरेज में देखा था, क्योंकि मैं वहां पर था, उसके बाद ही मैं उस जगह पर गया था। तो आपने क्यों किया वैसा, आप तो ऐसे नहीं थे, आपको मुझे बताना होगा कि आपने क्यों उस लड़की की जान ली, शिवी ने रोते हुए पूछा। मिस्टर अय्यर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिवी या सिद्धांत आगे कुछ कह पाते उससे पहले कांस्टेबल अंदर आए। लंच ब्रेक खत्म हो गया है, इन्हें कोर्टरूम में ले जाना है, आप भी पहुंच जाइए, अंदर आते ही उसने सिद्धांत से कहा। सिद्धांत ने उसकी बात पर हामी भरी और शिवी की तरफ से देखा। उसने आंखों ही आंखों में उसे सब संभालने का कहा, जबकि सच ये था कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका था। प्लीज रुको, मुझे पापा से बात करनी है, प्लीज सिद्धांत, शिवी गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन मजबूरन सिद्धांत को कॉल कट करना पड़ा। कॉल कट होने के बाद शिवी के अंदर का बांध टूट गया था, वो बाथरूम में जोर जोर से रो रही थी। उसी समय आर्या बाथरूम में आया। थैंक गॉड यहाँ कोई नहीं है, इससे अच्छा तो पूरी रात ऑफिस में ही काम कर लेता, कम से कम घर से यहाँ आने की तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ती, मिस्टर श्रीवास्तव ने भी अर्जेंट में आने का बोल दिया, ठीक से तैयार भी नहीं हो पाया। आर्या वहां लगे आईने में देखकर खुद के बाल सेट कर रहा था, तभी उसे शिवी की रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर उसके हाथ रुक गए। शिवी जिस बाथरूम में थी
वो उसके पास आया और उसके रोने की आवाज़ सुनने लगा।